दिल तख्त नशीन आत्माएं अनुभव करके रहो। ऐसा तख्त सारे कल्प में अब एक ही बार मिलता है और कोई समय नहीं मिलता। तो बाबा कहते हैं सदा अपने को बाप के दिल तख्त नशीन आत्माएं अनुभव करते हो। इस तख्त की क्या क्या विशेषता है?
कल तख्त पर है वो
नहीं,
दिल
इस
तख्त
तख्त
पर
की
है।
विशेषता ये बेहद का तख्त है और दिल तख्त की निशानी है, बाप के दिल तख्त की निशानी है।
प्योर आत्माएं आके यहाँ बैठ सकते हैं,
केवल प्योर आत्माएं इस तख्त पर, क्योंकि ये तख्त अति प्योर है तो केवल प्योर आत्मा ही यहाँ बैठ सकती है। बेहद का है, प्योर आत्माएं बैठ सकती है और
कभी भी आ सकते हैं, कभी भी
एनी टाइम कम एंड गो, कभी भी बैठ सकते हैं, सुरक्षित है, कोई भय नहीं है। कुर्सी छीन जाने का कोई भय नहीं है, निर्भय है, कोई फिक्र नहीं है इस तख्त पर। प्राप्ति अभवत है, तख्त पर बैठते ही प्राप्तियां चालू हो जाती, शक्तियां चालू हो जाती, खजाने मिलने चालू हो जाते। और तख्त की क्या क्या विशेषता है? परमात्मा दिल तख्त पर
अपना स्वधर्म याद रहा,
शक्ति आ जाएगी तो आत्मा समर्थ बन जाएगी। और कोई फिक्र, कोई चिंता, कोई गम, कोई दुख,
अपने ही श्रीमत पर चलते रहे।
जो वो क्राइटेरिया है वो तो शर्त है वहां बैठने की, वहां बैठने के बाद अपने श्रीमत पर चलते रहे। ये तख्त पर जो बैठा है उसे फिक्र नहीं, उसे कोई चिंता नहीं, उसे कोई दुख नहीं, उसे कोई गम नहीं, कोई परेशानी नहीं,
शांति शांति,
शांति की अनुभूति,
डबल लाइट है,
डबल लाइट रहेंगे।
बैठ के बांट बोल सकते हैं,
वहां बैठ के दातापन की स्थिति,
विश्व कल्याण का ताज पहने,
ताज नहीं तख्त, तख्त तख्त का चालू है, पहले तख्त, ये उंगली है तख्त के ऊपर। सदा अपने को बाप के दिल तख्त नशीन आत्माएं कर अनुभव करते हो। तो ये तख्त बेहद का, ये तख्त श्रेष्ठ है, ये तख्त कल्पों में एक ही बार मिलता है, ये तख्त पर केवल प्योर आत्मा ही बैठ सकती है। इस पर कौन बैठ सकती है सेपरेट टॉपिक, इस तख्त की विशेषता क्या है वो अलग, इस पर बैठने की जो क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या क्वालिटीज रिक्वायर्ड है, वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है। ऐसा तख्त सारे कल्प में अब एक ही बार मिलता है, ये है उसकी क्वालिटी, और कोई समय नहीं मिलता। जो श्रेष्ठ बात हो और मिले भी एक ही बार हो तो उस तख्त को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। श्रेष्ठ तख्त, महान तख्त, जो बाप के दिल तख्त नशीन होंगे, सदा होंगे। तो दिल तख्त के नशीन की निशानी क्या है? तख्त पर बैठने से क्या होता है? तख्त पर बैठने से अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करेंगे। तो सदा बेफिक्र रहते हो या कभी थोड़ा थोड़ा फिक्र आ जाता है, चाहे अपना, चाहे सेवा का, चाहे दूसरों का, अपना, सेवा या दूसरे। तो सदा दिल तख्त पर बैठने वाली आत्मा नशे में भी रहती है और नशा रहने के कारण स्वतः ही बेफिक्र रहती है। तो इस तख्त पर बैठने वाली आत्मा नशे में रहती है। एक है तख्त की निशानी, एक है तख्त पर बैठने वाली आत्माओं को क्या क्या होगा, एक है क्राइटेरिया, शर्तें क्या क्या उस तख्त पर बैठने के लिए। क्योंकि इस तख्त में यह विशेषता है कि जब तक जो तख्त नशीन होगा वो सब बातों में बेफिक्र होगा, कोई चिंता, गम, परेशानी। जैसे आजकल भी कोई कोई स्थान को विशेष, कोई ना कोई नवीनता, विशेषता मिली हुई है, दिल तख्त को यह विशेषता है, फिक्र आ नहीं सकता, यह इस तख्त की विशेषता है। तो नीचे क्यों आते हो जो फिक्र हो? बाबा ने उत्तर दिया, काम करने के लिए नीचे आना पड़ता है, तख्त पर बैठ के थोड़े काम किए जाते हैं, वहां से कराया जाता है। पर बाबा आगे भी बता रहे, परंतु इस दिल तख्त को यह भी वरदान मिला हुआ, कोई भी कार्य करते भी दिल तख्त में नशीन ले सकते, ये स्पेशल तख्त है। जो तख्त पर बैठो और कार्य करो, उधर तख्त पर बैठ के कार्य नहीं कर सकते, उतरना पड़ता है नीचे, तख्त पर बैठ के ही सारे कार्य करो। तो फिर सदा क्यों नहीं रहते? तो इस तख्त की विशेषता है, दो से तीन विशेषता है मुख्य सुनाई यहाँ पर। ये जो तख्त है सारे कल्प में एक ही बार मिलता है, दूसरा जो इस तख्त पर है उसे फिक्र नहीं रहती है, और तीसरा इस तख्त पर बैठ कर भी कार्य किए जा सकते हैं। अभी और आगे, और कोई अट्रैक्शन, अट्रैक्शन अर्थात आकर्षण है नहीं लेकिन हो जाता है। कभी भी कोई भी बात सामने आए तो फौरन दिल तक मशीन बन जाओ, तो कोई भी बात अपनी तरफ खींचेगी नहीं। कोई भी बात सामने आए तो इस दिल तक पर बैठ जाओ। बैठने की प्रैक्टिस है या कभी कभी प्रैक्टिस भूल जाती है? दिल तक तो मशीन बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा? तिलकधारी भी बनना पड़ेगा। अगर तिलक है तो तख्त भी है और ताज दोनों भी है। तिलक और तख्त का आधार ताज और तख्त का आधार तिलक है। कौन सा तिलक? स्मृति का तिलक, आत्मस्मृति का तिलक, स्वमान का तिलक, स्वराज्य अधिकारी का तिलक, मास्टर सर्वशक्तिमान का तिलक। तो तख्त नशीन बनने के लिए तिलकधारी भी बनना पड़े। तिलक कौन सा? स्मृति का, स्मरण, याद। तिलक है तो तख्त नशीन भी है, तिलक नहीं तो तख्त नहीं। अविनाशी तिलक लगा हुआ है या कभी कभी मिटता है, कभी लगता है? अविनाशी तिलक नहीं, तो निरंतर स्मृति, निरंतर याद, निरंतर स्मरण, यह तिलक है। स्मृति का तिलक लगा और तख्त नशीन हो, सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और दूसरों को भी नशे की स्मृति दिलाएंगे। तिलक लगते ही आत्मा नशे में आएगी। तिलक लगाना मुश्किल है या सहज है? सदा इजी है ना। सदा शब्द में मुस्कुराते हैं सब। बाबा को सदा शब्द बहुत प्रिय है, डबल शब्द उसको प्रिय है, उसके फेवरेट वर्ड्स है। अगर बाप दादा पूछे कि 21 जन्मों में कभी राज्य अधिकारी बनो, कभी प्रजा बनो, राज्य अधिकारी नहीं बनो, मंजूर है? नहीं, तो अभी चांस है, क्योंकि भविष्य का आधार वर्तमान पर है। जो कुछ अभी करोगे उसके आधार से तुम्हारा भविष्य निश्चित होगा। अगर अभी सदा तख्त नशीन है तो वहां भी सदा राज्य अधिकारी बनेंगे। तो सदा शब्द को क्या करो? अंडरलाइन करो। किससे? दृढ़ संकल्प। बच्चे को कभी भी बाप का वर्षा भूलता है क्या? बच्चों को कभी बाप का वर्षा भूलता है क्या? कौन सा वर्षा दिया है बाबा ने संगम पर? अति निर्य सुख, खुशी, शक्ति, गुण, ज्ञान, पवित्रता, सर्व संबंधों की प्राप्तियां, प्राप्तियों का वर्षा और श्रेष्ठ संकल्प, सारे खजाने जिसमें अनुभूतियां, श्रेष्ठ अनुभूतियां, ये सब वर्षे। उधर उधर का छोड़ो, इधर। तो बच्चे को कभी भी बाप का वर्षा भूलता है क्या? तो यह दिल तख्त भी बाप का वर्षा है। भगवान ने अपने दिल में बैठने का स्थान दिया है, ये सबसे बड़ी प्राप्ति है, सबसे बड़ा वर्षा है। तो वर्षे को सदा, तो वर्षा तो सदा साथ रहेगा ना। क्या याद रखेंगे? कौन हो? बेफिक्र बादशाह। बार बार स्मृति को इमर्ज करते रहना, बार बार स्मृति को इमर्ज करते रहना, बार बार याद करते रहना, क्योंकि खेल ही स्मृति और विस्मृति का है। सदा यह नशा रहे कि हम साधारण आत्मा नहीं है। कौन है? विशेष आत्मा। आप जैसी विशेष आत्माएं सारे विश्व में बहुत थोड़ी है। थोड़ों में आप हो इस खुशी में सदा। अच्छा, तो क्या सुना? सदा अपने को बाप के दिल तख्त नशीन आत्माएं अनुभव करते हो, ऐसा तख्त सारे कल्प में एक ही बार मिलता है और कोई समय नहीं मिलता। अब ये बताओ, ये तख्त किसको किसको मिलता है? ये तो तख्त की विशेषता हो गई, और तख्त पर बैठने के बाद नशा हो जाता है। तख्त के पर बैठने के बाद क्या क्या होता है, वह अलग, तख्त की विशेषता क्या क्या। अब तख्त नशीन कौन कौन होगा? परमात्मा दिल तख्त नशीन जो योगी है, जो सबूत बच्चे और आज्ञाकारी, जिसने उसने जो कहा वो मानते हैं। तो प्योर आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा है, महान आत्मा है, पुण्य आत्मा है, समर्थ आत्मा है, सेंसिबल आत्मा है, सच्चे दिल वाले, साफ दिल वाले, निर्मल हृदय वाले, जो देहभान की मिट्टी में कभी पाव नहीं रखते, सदा ऊपर रहते हैं, जो निश्चय बुद्धि, संपूर्ण निश्चय बुद्धि, जो बहुत ही भोले हैं, जो स्मृति स्वरूप है, और
जो कदम कदम श्रीमद,
कदम कदम पर श्रीमद पर चलते हैं, फॉलो करते हैं बाप को, जो दातापन की स्टेज में स्थित है, जैसा वो है वैसे वो है, जो सदा खुश रहते हैं, वो तो आंखों के सामने घूमते रहते हैं, और उसके दिल तक तो जो सर्विसेबल है, सर्विस में जो तत्पर है, वो बाप के दिल पर चढ़ते हैं,
इसके सब लगाओ,
जो मोह जीत है,
लगाओ मुक्त,
जो रोने से मुक्त है, कल बाबा ने कहा था ना, रोना मुक्त, लगाव से मुक्त, मोह जीत, लगाव और लालच
और दुख,
जो दुखी, जो दुखी नहीं है, जो सदा खुश है, और
जो पढ़ते पढ़ाते हैं,
राजयोगी जो है, जो खुद पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं, वो, और
जो
समानधारी आत्मा है, जो धैर्यवान है, जो गंभीर है, समझदार है, दिव्य गुणधारी, सब दिव्य गुण जिनमें, जो ज्ञानी है, जो योगी है, जिनके योग का चार्ट कितना घंटा है,
कोई घंटा
सदा ही याद स्वरूप है,
याद तो सदा रहती है, लेकिन किसकी याद रहती है?
याद तो आत्मा को किसी न किसी की रहती है, बिना याद के वो रह नहीं सकती, इसके लिए ये वाक्य अपूर्ण है कि हम सदा याद में है, पर किसकी वो तो पूछा ही नहीं। बाप के दिल तख्त नशीन बनने वाली आत्माओं की निशानी है वो केवल स्व कल्याण, स्वदेश कल्याण की परिधि से जो ऊपर उठ गए, जो विश्व कल्याणकारी आत्मा है, आज की मुरली तख्त पर बैठने वाली आत्माओं की इन पांच निशानियां सुनाइए बाबा ने, विश्व कल्याणकारी आत्माओं की, जो विश्व कल्याणकारी आत्मा है वही विश्व राज्य अधिकारी या बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा। सबसे पहली निशानी, उन्हें पता है कि समय बहुत कम है, इस कार्य महान है, इस वजह से अपना संकल्प और अपना समय सफल करने वाली आत्मा है, तन मन धन सफल करने वाली, तन मन धन सेवा में अर्पित करने वाली जो आत्मा है, उनकी दृष्टि में और उनकी स्मृति में सदा विश्व की आत्माएं रहेगी। कैसे अप्राप्त और अतृप्त को प्राप्त तृप्त कराए, कैसे भिखारी को संपन्न बनाए, कैसे वंचित आत्माओं को संबंध संपर्क में लाए, कैसे बाप से प्राप्त हुई शक्तियां वरदान के रूप में जो प्राप्त हुई शक्ति है वो दाता बन के कैसे सब आत्माओं को दे, चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा, चौथा अथक होंगे, निरंतर होंगे, ऑलराउंडर होंगे, एवर रेडी होंगे, ये चौथा, और पांचवा, चाहे कैसी भी अवगुण वाली आत्मा हो, चाहे कड़े संस्कार वाली आत्मा हो, चाहे कैसे भी पत्थर बुद्धि आत्मा हो, कम बुद्धि आत्मा हो, चाहे ग्लानी करने वाली आत्मा हो, चाहे अज्ञानियों में पतित अवगुणधारी आत्माएं हो, ज्ञानियों में पुरुषार्थहीन आत्माएं हो, चाहे कितनी भी बुराई और कमजोरी वाली आत्माएं हो, उन सब के प्रति रहम दिल होगी, लॉफुल और लवफुल होगी, बाप समान होगी। जैसे बाप क्या करते हैं, बच्चों की बुराइयां और कमजोरियों को समा लेते हैं और क्षमा करते हैं, जैसे देवता भक्तों को क्षमा करते हैं, वैसे ये आत्माएं भी मास्टर रचता होगी, विश्वराज मास्टर अधिकारी आत्माएं होगी, बाप समान आत्माएं होगी, इस अधिकार से वो आत्माओं के अवगुणों को, बुराइयों को पहले तो क्षमा करेगी, फर्स्ट स्टेप इज क्षमा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है,
उनको सम्मान देंगी,
उनको उनकी महिमा से उनको महान बनाएंगे, उनकी महिमा करेंगे, उनको याद दिलाएंगे, तुम राज्य वंश की हो, ब्रह्मा वंश की हो, जैसे राजपूत वंश की आत्मा है तो हिम्मत आ जाती है ना जब उनको बताया जाता है कि तुम क्या हो। किसी आत्मा को ये ना कहो कि तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो। अगर कोई डॉक्टर किसी को ये कह दे कि तुम मरने वाले हो तो उसे हार्ट फेल हो जाएगा। तो वैसे भी किसी भी आत्मा को ये भी दिल शिकस्त करना हुआ तो सबसे पहले उनके अवगुण, उनकी बुराइयों को क्षमा करना, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, उनकी महिमा करना, उनके गुणगान करना, उन्हें सम्मान देना, उन्हें शक्तियों से भरना। और थर्ड स्टेप, इशारा से उनको शिक्षा भी देनी है। जैसे और एक उदाहरण दिया, हिम्मत और उल्लास का पहले तो धरनी पर हल चलाओ, पहले हिम्मत और उत्साह का धरनी पर हल चलाओ, फिर बीज डालो। कलराटी जमीन पे बीज डालोगे तो सफलता का मेहनत ज्यादा। इसके लिए ये सारे क्राइटेरिया है। उन आत्माओं में रहम दिल होंगे, उनमें वहम नहीं होगा कि ये आत्मा तो कभी बदल नहीं सकती, ये तो राजा तो सब बन नहीं सकते, ये तो ये कर नहीं सकती, ये वहम नहीं होगा। इसके बजाय रहम होगा, अहम नहीं होगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ये कर सकता हूँ और ये कोई नहीं कर सकता। ये अहम भी नहीं होगा और वो वहम भी नहीं होगा। अहम और वहम से मुक्त वो आत्मा रहम दिल होगी। ऐसी रहम दिल आत्मा ही विश्व कल्याण करी है, वही स्व कल्याण और देश कल्याण केवल से थोड़ा ऊपर उठेगी और विश्व कल्याण की स्मृति और दृष्टि उसकी दृष्टि में होगा। तो इसको अपनी दृष्टि और स्मृति में, बाप दादा अगली बार जब आए तो सभी को ताज तक और तिलक धारी देखे, ऐसी बाप दादा की आशा। तो दिल तख्त पर कौन बैठेंगे? जो विश्व कल्याणकारी है। केवल स्व कल्याणधारी नहीं, केवल अपने देश के कल्याणधारी नहीं, केवल अपने सेंटर के कल्याणधारी नहीं, कैसे भी अवगुणधारी आत्माओं को भी इतनी श्रेष्ठ दृष्टि से देखेंगे। ये सारी बातें आज पढ़ने के लिए। जो और विश्व कल्याणकारी कौन है? और दिल तख्त पर कौन बैठेंगे? जो कि स्वस्थिति से परिस्थिति को वश में करे, क्योंकि परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति रचता है। तो रचता श्रेष्ठ है, रचना रचना के अधीन है, ऐसी आत्मा। और
जो अपने तक और बैठे रहेंगे
जो पहले से
पहले अपने तक और बैठे रहेंगे
पहले। हाँ, ये तो सबसे पहला क्राइटेरिया है। जो अकाल तख्त पर बैठी हुई आत्मा है, जो आत्माभिमानी स्थिति में स्थित है, जो देही अभिमानी नहीं, जो आत्माभिमानी। देह को क्या देखना है? परसों कल बोला ना बाबा ने, देह को क्या देखेंगे? जो आत्माभिमानी है वही दिल तख्त पर बैठे,
जो याद की गोदी में रहकर रत्नों से खेलती रहे,
याद की गोदी में रहकर
और रत्नों से खेलती रहे,
जो ज्ञान रत्नों से खेलते हैं केवल, पत्थर से नहीं, मिट्टी से नहीं, जो नीचे नहीं आते तथा ऊपर रहते, वो सभी आत्माएं दिल तख्त में। हल्के होंगे, डबल लाइट होंगे, कोई बोझ नहीं, कोई भार नहीं, निमित्त भाव होगा। तो बाबा कहते हैं जो श्रेष्ठ बात हो और मिले भी एक ही बार तो उस तख्त को अभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। कीमती चीज अगर मिल जाए तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो बाप के दिल तख्त नशीन होंगे, सदा होंगे। तो तख्त नशीन की निशानी क्या है? तख्त पर बैठने से क्या होता है? तख्त पर बैठने से अपने को बेफिक्र बादशाह महसूस करेंगे। कोई भी फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई तनाव नहीं, सहज अवस्था, स्थिर अवस्था। तो सदा बेफिक्र रहती है और कभी थोड़ी थोड़ी फिक्र आ जाती है। चाहे किस किस की फिक्र? तीन बताए बाबा ने, स्व की, सेवा की और दूसरों की। स्व की फिक्र में क्या क्या? पता नहीं मेरा क्या होगा, बीमार पड़ूंगा तो कोई देखने भी आएगा कि नहीं पता नहीं। और चिमन भाई तो आ जाएंगे बस, बाकी तो बाकी का पता भरोसा नहीं। और अपनी कौन सी फिक्र है? फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना, बहुत बड़ी अपनी फिक्र, पुरुषार्थ की फिक्र, अभी भी कुछ आगे बढ़ नहीं रहे, क्या करे, अवगुण तो जा ही नहीं रहे। सेवा की फिक्र कैसे होगी, ये तो अच्छी बात है, होनी चाहिए सेवा की फिक्र। टेंशन अच्छा लगता भी होगी,
मुख्य उसमें तन की फिक्र लगाएगी, तन मेरा ठीक नहीं रहेगा क्या सेवा करूं, बात मुख्य होती है।
अच्छा शरीर चाहिए तो सेवा को, शरीर ठीक नहीं है तो क्या सेवा
करते हैं, नहीं तो डिस्टर्ब होता है सेवा,
सेवा और दूसरों की चिंता,
पता नहीं मेरे कांगना की जले कर दिए।
दूसरों की चिंता में जो स्वजन है, परिवार वाले, पति पत्नी मित्र संबंधी, थोड़ी उनकी चिंता, उनका क्या होगा,
मोह नहीं
है, मोह के कारण उत्पन्न जो चिंता है वो सब आ जाएगी। तो सदा दिल तक पर बैठने वाली आत्मा नशे में भी रहती है और नशे रहने के कारण स्वतः ही बेफिक्र रहती है। दिल तक पर बैठ जाओ तो स्वतः ही सारी बातें आ जाती है, उसमें नशा आ जाता है। जैसे वो दिखाया ना सिंहासन 32 में, राजा विक्रमादित्य का सिंहासन रहता है ना, एक पहाड़ी रहती है कि जिसमें एक सिंह, मतलब एक लड़का है गांव का, एक ऐसे अनपढ़ गवार लड़का रहता है, वो जब भी एक पहाड़ी पर जाकर बैठता है तो एकदम राजा की तरह उसको नशा चढ़ जाता है और ऐसे निर्णय देता है, जो भी समस्या लेके आते हैं गांव वाले वहां बैठकर एकदम एक्यूरेट सटीक निर्णय देता है, बरोबर यथार्थ निर्णय देता है, और जैसे नीचे आता है वो पागल जैसे करने लगता है, वैसे अनपढ़ गवार व्यक्ति रहता है। तो ये खबर राजा भोज तक पहुंचती है, राजा भोज को लगता है ये क्या है, कौन ये अद्भुत बालक है कि जो इतना राजा जो अपने आप को सम्राट कहता है वहां बैठने के बाद, और जो भी निर्णय, तो राजा एक ऐसी एक मनगढ़ंत परिस्थिति को रचना करता है कि देखते हैं इसकी निर्णय शक्ति कैसी है। और वो वाकई में ऐसा होता है कि वो जो निर्णय लेता है वो सही होता है, वो पकड़ लेता है चोर को वहां बैठकर, और जैसे नीचे आता है तो वो वापस अपनी बचकानी हरकतें करने लगता है। तो राजा को कहता है ये बच्चे में कुछ नहीं है, जरूर यहाँ कुछ है, इसको खोदो। तो वो पहाड़ी को खोदते हैं, खोदते खोदते तो दिखते वहां से एक बहुत बड़ा तख्त निकलता है, सिंहासन निकलता है वहां से। वो सिंहासन को अपने राजमहल में लेके आ जाता है, उसमें 32 पुतलियां होती है, और जैसे सिंहासन पे चढ़ने जाता है एक पुतली जीवंत तो हो जाती है और वहां पे आती है, बोलते रुको कहां जा रहे हो, ये राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। फिर वो कहानी सुनाती है, एक बार ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तो राजा विक्रमादित्य ने ऐसा ऐसा किया, तुम में वो गुण है, तो वो पीछे हट जाता है, ये तो मुझ में है ही नहीं, अगर वो होगा तो ही तुम इस तख्त पर बैठ सकते, नहीं तो नहीं। फिर दूसरे दिन ऐसी 32 कहानियां हैं,
32 साल की ब्रह्मा
होते हैं, 32 ब्रह्मा टीवी पे सीरियल आता था ना सिंहासन 32, अभी भी अवेलेबल है टीवी, तो ऐसी 32 कहानियां हैं। पर अंत में जब सबसे आखिरी पुतली जो होती है 32, और हर एक पुतली का एक एक नाम है उसमें, वो एक एक कहानी सुनाती है कि जिसमें बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी, जैसे कि ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, फिर विक्रमादित्य ने कैसे एकदम अच्छा निर्णय दिया, तो वो उसमें फिर हर एक कहानी से एक एक गुण पता चलता है जो राजा विक्रमादित्य उज्जैन, जो कि बाबा ब्रह्मा के लिए कह रहे, कि ब्रह्मा ही विक्रमादित्य था, ब्रह्मा का ये केवल दो ही जन्म अभी तक बाबा ने बताया, एक तो कृष्ण का और एक द्वापर का विक्रमादित्य का, और कोई जन्म बाबा ने अभी तक बताया नहीं। तो उसके एक एक गुण उसमें पता चलते हैं। पर आखिरी का जो जब वो चढ़ने जाता है तो आखिरी पुतली भी उसको सारा सुनाती है कहानी, पर वो कहती है कि तुम में बहुत नम्रता है, कि तुमने हर बार माना कि ये मुझ में गुण नहीं, इसके लिए तुम इस तख्त के अधिकारी हो। तो जो राजा भोज होता है वो उस तख्त पर बैठते हैं। तो ये जो तख्त है इस पर बैठने के लिए, ये तो फिर भी मनुष्य का तख्त है, ये है परमात्मा का दिल तख्त, वहां बैठने के लिए क्राइटेरिया थोड़ा ज्यादा है। केवल गुण नहीं, गुण भी चाहिए, शक्तियां भी चाहिए, पवित्रता भी चाहिए, सब कुछ चाहिए वहां। तो जैसे आजकल भी कोई स्थान का विशेष, कोई ना कोई नवीनता विशेषता मिली हुई है, तो दिल तक की विशेषता है, फिक्र आ नहीं सकता, तो नीचे क्यों आ जाते हो, काम करने के लिए नीचे आना पड़ता है। दिल तख्त को यह भी वरदान मिला हुआ है कि कोई भी कार्य करते दिल तख्त नशीन बन सकते हो, फिर सदा क्यों नहीं रहते। चुपके से बाबा एक प्रश्न पूछता है,
प्रयास
जारी है, प्रयास जारी, और कोई आकर्षण है। अभी ये दूसरी बात है कि जो इस तख्त पर बैठता है वो सदा ही आकर्षण से मुक्त हो जाता है, उसे इस संसार की कोई चीज, कोई बात, कोई व्यक्ति, कोई देह आकर्षित नहीं कर सकता। है नहीं लेकिन हो जाती है। कभी भी कोई बात सामने आए तो फौरन दिल तख्त नशीन बन जाओ, तो कोई भी बात अपनी तरफ खींचे ही नहीं। कैसे बन जाओगे? ये तो अलंकारिक भाषा है सारी। दिल तख्त नशीन बनना अर्थात जो बाबा के अति प्रिय है, चाहे उसको दिल तख्त नशीन कहो, बाप के गले का हार कहो, मस्तक का मनी कहो, नैनों का नूर कहो, अलग अलग शब्दों से बाबा एक ही बात बताते हैं। मेन बात तो एक ही कि परमात्मा प्रिय कैसे बनना है, भगवान को कौन प्रिय है।
उसने कहा उच्चारण और आचरण,
उच्चारण और आचरण श्रेष्ठ।
उसने कहा वो किया
शिव बाबा का उच्चारण, ब्रह्मा बाबा का
आचरण, दोनों जो न्यारे रहते हैं, जो प्यारे रहते हैं, जिनमें सरलता है। सरलता, ये सरलता ऐसा गुण है। बाइबल में ऐसे बहुत सारे वाक्य है कि स्वर्ग में कौन जाएगा, ये अगर है तो तुम स्वर्ग में जाओगे। ब्लेसेड आर दोज, धन्य भागी है जो गरीब है वो स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे। धन्य भागी है जो नम्र है वो स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे। ब्लेसेड आर दोज हु आर प्योर इन हार्ट, जो पवित्र है वो स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे। पर एक बात ऐसी है उसमें कि जिसमें ये कहा हुआ है कि धन्य है वो जो सरलचित है, इस बच्ची की तरह, छोटी बच्ची को उठा के, प्रभु का राज्य उनका है। ब्लेसेड आर दोज हु हैव चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ गॉड। उनके लिए ये नहीं कहा है कि उनको स्वर्ग का राज्य मिलेगा या प्रभु का राज्य मिलेगा, मिलेगा नहीं है। ये एक बहुत सूक्ष्म बात है बाइबल में। ब्लेसेड आर दोज हु आर प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी द किंगडम ऑफ गॉड। ब्लेसेड आर दोज हु आर हम्बल, दे शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। वो सब उधर जाएंगे, पर जो सरल चित है उसके लिए कहा है देयर्स इज द किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु का राज्य उनका है। सरलता के गुण को सर्वश्रेष्ठ गुण माना है उसने। इनोसेंस, इनोसेंस सरलता, जिसमें बहुत ही कुटिलता नहीं है, जिनमें कुटिलता नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं रच रहे अंदर, या कोई गलती की तो वो तुरंत एक्सेप्ट करने वाले, या उसको कोई छिपाने वाले, उसको मॉडिफाई करने वाले नहीं। सरल स्वभाव छुवत छल नाही, ऐसे राम के लिए कहा है तुलसीदास ने। राम गया है वन में, वो बगीचे में सीता को देखा और बहुत देर देखता ही रहा, मतलब उसको अच्छी लगी, तो ये तो प्राइवेट बात है, आके अपने गुरु को सुना देता है कि मैं गया और वो मुझे मिली और मुझे बहुत अच्छी लगी, वो भी मुझे देखती रही और मैं भी उसे देखता रहा। तुलसीदास ने लिखा है सरल स्वभाव छुवत छल नाही, उसका स्वभाव इतना सरल है कि उसको छल छूता ही नहीं। और ऐसे ही लोग उसे भी प्रिय है जिनको छल नहीं छूता, जिनमें छल है, कपट है, ये उसको प्रिय नहीं है। तो सरलता जिनमें है वो भी दिल तख्त के अधिकारी है। तो जो दिल तख्त है उन्हें कोई आकर्षण खींचेगा नहीं। बैठने की प्रैक्टिस है या कभी कभी प्रैक्टिस भूल जाती है। तख्त नशीन बनने के लिए तिलकधारी भी बनना पड़ेगा। फिर बाबा ने दो बातें बताई, एक तो तख्त की बात और दूसरी तिलक की बात। तो तिलक अर्थात स्मृति का तिलक, अविनाशी तिलक लगा हुआ, कभी मिटता नहीं, ऐसा तिलक अविनाशी, निरंतर याद, निरंतर स्मृति, निरंतर स्मरण, एक की एक का स्मरण, कल भी कहा था एकांत, निरंतर एकांत और स्मरण, ये है बेहद के वानप्रस्थ अवस्था। तो स्मृति का तिलक लगा और दिल तक तो स्वतः ही नशे में रहेंगे और दूसरों को भी नशे की स्मृति दिलाएंगे। ये मुश्किल है या सहज? सदा शब्द में मुस्कुराते हैं, तो बाबा ने कहा सदा शब्द को सदा अंडरलाइन करो। बच्चों को भी कभी भी बाप का वर्षा भूलता है क्या? तो यह दिल तक भी क्या है? बाप का वर्षा है, उसके प्रिय बनना, उसकी लिस्ट में, उन लिस्ट में जिनको भगवान प्यार करता है, उन लिस्ट में होना। वो आत्मा है जो भगवान को प्यार करती है, उनकी लिस्ट अलग, ये दूसरी लिस्ट, स्पेशल लिस्ट, कि जिसमें भगवान किस किस को प्यार करता है उसमें। तो कौन हो बेफिक्र बादशाह? बार बार स्मृति को इमर्ज करते रहना, सदा यह नशा रहे कि हम साधारण आत्मा नहीं है लेकिन विशेष आत्मा है। ये असाधारण अपने को भी बताना और दूसरी आत्माओं को भी बताना, जो पुरुषार्थी है उनको पहले महिमा से महान बनाओ, फर्स्ट स्टेप। स्वयं को भी महान समझना तो दूसरों को भी महान समझना, महिमा से महान, ये फर्स्ट स्टेप है। पहले तो नहीं, फर्स्ट स्टेप उनके अवगुणों को भूलना, क्षमा करना, सेकंड उनको महिमा करना, और तीसरा उनको इशारा और फिर शिक्षा देना। हिम्मत उत्साह का पहले, उल्लास का पहले हल चलाओ फिर बीज डालो, तो समर्थ आत्मा बनाना। उनकी उनको समर्थ बनाना, उनकी कमजोरियों को भुलाए उनको समर्थ बनाना। लेकिन विशेष, तो आप जैसी विशेष आत्मा सारे विश्व में बहुत थोड़ी, बहुत थोड़ी, गिनी चुनी है। थोड़े में आप हो, इसी खुशी में सदा रहो। अच्छा।